आपकी समस्या ये है, यहाँ तपोभूमि में रहते हैं, सब कुछ ठीक रहता है। तपोभूमि से घर जाते हैं, धीरे धीरे वो भोगों का वातावरण मन को घेर लेता है और प्रगति रुक जाती है। एक बात तो बिल्कुल निश्चित है कि हर व्यक्ति अपना भला चाहता है, अपना कल्याण चाहता है, सुखी जीवन चाहता है। उसी के लिए आप यहां भी आए हो, उसी के लिए आप गृहस्थ में भी रहते हो। तो विचार ये करना चाहिए कि यहां आने के बाद आप यहां के वातावरण में मस्त क्यों हो जाते हो, और घर जाने के बाद धीरे धीरे घर के वातावरण में मस्त हो जाते हो। इसका कारण तो विचार करना पड़ेगा। तो दोनों में डिफरेंस कहां खड़ा हुआ है? डिफरेंस आपके निर्णय पे खड़ा हुआ है, आपकी समझ पे खड़ा हुआ है। यहां आकर आपको सत्य विचार पढ़ने को मिलते हैं, सत्य विचार सुनने को मिलते हैं और उस पर मनन करने को मिलता है। यहां का वातावरण ऐसा है, यहां का खान पान ऐसा है, यहां जिनके संग रहते हो उनका दैनिक जो प्रोग्राम है वो इस प्रकार का है कि आपको वो सत्विचार अच्छे लगते हैं। अच्छे लगने का मतलब है वो ठीक लगते हैं, और ये बात मन के अंदर बैठ जाती है कि इन विचारों के अनुसार यदि जीवन जिया गया तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। यहां जो विचार मिलते हैं उसका बेस क्या है? उसका बेस देखा जाए तो मेरे शरीर की रचना ही तो है। सत्य विचारों में बार बार हमको एक बात समझाई जाती है जिसको हम सब जानते हैं, अपने अनुभव से जानते हैं कि ये देह निरंतर परिवर्तनशील है। बचपन से अब तक ये कितनी बदल चुकी, आगे भी इसमें निरंतर परिवर्तन होता रहेगा, और यहां तक परिवर्तन होता है कि ये नष्ट हो जाती है अर्थात मौत को प्राप्त हो जाती है। संसारी लोगों के लिए मौत के साथ ही सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन जो सत्विचार पढ़ने वाला है, सत्विचार करने वाला है, उन विचारों पर मनन करने वाला है, उसके लिए सब कुछ खत्म नहीं होता। वो ये अच्छी तरह जानता है क्योंकि सत्विचार का यदि श्रवण और मनन और अध्ययन कर रहा है तो ये अच्छी तरह से जानता है कि ये जो स्थूल शरीर है ये तो खत्म हो जाता है, जो आंख से दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है, जो मेरे अनुभव में उस वक्त आता है जब मैं सिमरन करने बैठता हूं, क्योंकि सिमरन में आप मंत्र को याद करना चाहते हो लेकिन मन के अंदर सैकड़ों तरह के संकल्प उठते रहते हैं, तो आप अपने अनुभव से जानते हो कि ये संकल्प मन में उठ रहे हैं, इसीलिए आप कोई किताब नहीं पढ़ते हो, आपको पता है ये संकल्प आपके मन में उठ रहे हैं। क्यों उठ रहे हैं? जैसे संस्कार आपने, जैसी आदतें आपने संसार में बनाई हैं, चाहे इस जन्म में, चाहे पिछले जन्म में, चाहे जवानी के दिनों में, चाहे बचपन के दिनों में, क्योंकि बचपन का शरीर दूसरा था, जवानी का शरीर दूसरा है, शरीर तो बदल गया, बचपन वाला शरीर तो दूर दूर तक नहीं है, हर चीज बदल चुकी है, लेकिन मन नहीं बदला है, मन वही, देह तो आपकी बचपन से लेकर जवानी तक बदल गई। जो आपका एक साल का रूप था, माता पिता भी नहीं पहचानेंगे ये वही है, देह में तो टोटल चेंज हो चुकी है, लेकिन मन वही है, और मन में संस्कार पूर्व जन्म के पहले से लेके आया था ना, लेकिन आज जो मेरा मन है उसमें इस जन्म में जो कर्म किए, जो भोग विलास किए, जिन आदतों का गुलाम होकर मैंने कर्म किए, उनके इंप्रेशंस, उनके संस्कार मेरे मन के अंदर और जुड़ गए, तो आज जो मेरा मन है उसमें कुछ संस्कार नए भी जुड़ गए। अब उन संस्कारों के अनुसार मेरे मन के अंदर संकल्प उठते हैं, यानी कह लिए कि विचार उठते हैं, और वो विचार मुझको वो काम नहीं करने देते जो मैं चाहता हूं, ईश्वर की याद करना प्रेम से। जब आपकी बुद्धि का निर्णय बदलता है कि जो संसारी जीवन मैंने अपनाया है ये तो कभी भी नाश हो जाएगा, फिर मेरा क्या होगा, भाई सत्विचार सुनने के बाद, पढ़ने के बाद आपके अंदर यही तो विचार आता है कि नाश हो गया तो मेरा क्या होगा, क्योंकि वहां बार बार आप पढ़ते हो कि जीव इस मन की गुलामी में आकर, मन के संस्कारों, मन की वासना के वशीभूत होकर देह से उल्टे सीधे कर्म करता है और उनका फल सुख और दुख रूप भोगता है और जिंदगी भर बेचैनी लेकर जीता है। जो जिंदगी भर बेचैनी लेकर जिया हो तो मरते वक्त शांति कहां से मिल जाएगी, वो वही बेचैनी लेकर शरीर का त्याग कर देता है। तो जो मन मैंने तैयार किया है इस जन्म में, वही मन नए शरीर में फिर काम करना शुरू कर देता है, मैं फिर उसी की लीला में फंसा रहता हूं जिंदगी भर, ये प्रक्रिया निरंतर आपकी चलती रहती है। तो आप अपने जीवन को इस तरह से देखते होते, जो सत्विचार सुनते हो तो आप अपने जीवन को इस तरह से देखते हो कि मैं जीव हूं या जीवात्मा हूं जो मन के बंधन में है, तन के बंधन में भी है, लेकिन तन का बंधन मौत के वक्त छूट जाता है, मन का बंधन फिर भी बना रहता है, और ये मन ईश्वर शक्ति से नई देह की रचना कर लेता है, उसमें फिर वही लीला चलती है जो इस जन्म में चली, जो पिछले जन्म में चली, अगले जन्म में भी वही लीला चलती है। तो जो कुछ भी पाप पुण्य मैंने किए थे उसका फल मैं प्रारब्ध के रूप में नए शरीर में भोगता हूं। तो यदि आप वर्तमान जन्म का एनालिसिस ठीक से करो, पास्ट और फ्यूचर का आपको पता नहीं, एनालिसिस कैसे करोगे इसका, लेकिन वर्तमान जन्म का आपको पता है, इसका एनालिसिस यदि ठीक प्रकार से करो तो आप इसी निर्णय पर पहुंचोगे कि बचपन से लेकर आज तक का जो मैंने जीवन व्यतीत किया है, चाहे वो होश संभालने से पहले का जीवन हो जब मुझे कुछ सही गलत का बोध ही नहीं था, जैसा स्वभाव था वैसे मैं क्रियाएं करता था, और बच्चे को आप किसी को भी देख लिए कितना रोता चिल्लाता है, कितना दुखी होता है, बात बात पे दुखी होता है, बिना बात के दुखी होता है, बच्चे का पेट भरा होता है, माँ कहती है तेरा तो पेट भरा हुआ है, फिर तू खाने को मांग रहा है, कभी कोई चीज मांगता है, कभी कोई चीज मांगता है, क्योंकि बुद्धि का वहां कमांड नहीं चल रहा है, मन के संस्कारों के अनुसार उसके अंदर इच्छाएं उठ रही हैं, जो इच्छा अंदर से उठती है वो मुझसे बोल देता है, मां भी तंग और बच्चा भी तंग। तो उस अबोध हालत में किस मानसिक क्लेश से बालक गुजरता है आप जरा विचार करके तो देखो, हर चीज के लिए वो पराधीन है, स्वतंत्रता है ही नहीं, घर वाले सब कहते कहीं गिर तो नहीं जाएगा, चलना सीख लेता है, कहते गिर तो नहीं जाएगा, पकड़ पकड़ के उसको बिठाते, बाहर नहीं निकलने देते उसको, कोई उठा के ले जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जिसको हम बड़ा खुशहाल जीवन समझते हैं, क्या निश्चिंत जीवन था बचपन का, लेकिन आज यदि उसकी स्थिति देखो, उस जीवन में आप लौटना नहीं चाहोगे। जब उस जीवन की पराधीनता पे विचार करोगे कि हर चीज का तो बंधन था, वहां पर कोई स्वतंत्रता ही नहीं, और कितना रोता चला था, कितना माँ बाप को परेशान करता था, तो वो जीवन क्या अच्छा है? कुछ लोगों को अच्छा लगता है क्योंकि बचपन एक खिलौने की तरह से होता है माँ बाप के लिए, भूलते देखते हैं कि घर में एक खिलौना खेल रहा है, उस मोह के कारण वो उसकी इच्छा करते हैं। लेकिन यदि विचार की दृष्टि से देखो तो कितने कष्ट हैं इसके अंदर, अपनी गंदगी भी साफ नहीं करता, उसी गंदगी में लोटता पोटता रहता है, देखो तो उसी हालत उसकी। उसके बाद हमारा स्कूल का जीवन आता है, बच्चों की क्या दुर्दशा होती है, आप जरा विचार करके देखो, उनकी मानसिक हालत में पहुंच कर देखो, बच्चा बस्ते का बोझ ढोना चाहता है क्या, वो सारा जो है कोर्स दिमाग में रखना चाहता है क्या, खेलना चाहता है। हर बच्चे की एक इच्छा होती है, खेलूं और खाऊं, दो में रुचि होती है, लेकिन माँ बाप के पास बुद्धि है, बच्चा अभी अज्ञान अज्ञानी, तो माँ बाप उसको एक सिस्टम में ढालते हैं। बालक के दृष्टिकोण से तो वो बोझ है ना, इसके ऊपर नहीं है, तो सुख का जीवन है या दुख का जीवन है, विचार की दृष्टि से देखो तो आप यही कहोगे कि नहीं, बालक के दृष्टिकोण से देखा जाए, वो जो अंदर सोच रहा है उसके, वो हम यदि समझ लें, वो तो उसका बड़ा बेचैनी वाला जीवन, बड़ा बंधन वाला जीवन। उसके पश्चात जब और बड़ा हो जाता हूं, मैं हाई स्कूल इंटर में आता हूं, तब मुझको खुद ही याद है, किसी को कहने की जरूरत नहीं है, कि उस समय भविष्य दिखाई पड़ने लगता है, आगे मेरी भी शादी होगी, आगे मैं भी पैसा कमाऊंगा, आगे मैं भी घर बनाऊंगा, जो कुछ भी है, बड़ी पोस्ट मिलेगी तो मेरा नाम होगा दुनिया में, लोग मेरी तारीफ करेंगे, तरह तरह की बातें वो उसकी समझ आ जाती है ना, उसको अब सोचता है, उसके लिए पूरी कोशिश करता है, पूरा जोर लगाता है कि मैं टॉप कर लूं, मेरे 90% नंबर आ जाए, मेरे ये 75% नंबर आ जाए, जो भी उसकी कैपेसिटी है। तो हर साल एक स्टूडेंट का जो भविष्य के प्रति जागरूक है, कितना पेनफुल उसका वर्ष होता है, विचार करके देखो, उस पढ़ाई का बोझ, कैरियर का बोझ लेकर वो जीता है, क्योंकि अपना होश आ गया है तो सारी चिंता फिक्र उसको खुद होती है, और यदि कोई स्टूडेंट लापरवाह है तो उसकी चिंता फिर माता पिता को होती है। तो ये खुशी का जीवन है क्या? प्रैक्टिकली देखो चीजों को, हम तो एक जैसे कोई चंद्रमा की तारीफ करे, समझ नहीं, कोई अपनी पत्नी की तारीफ करे तो बस उसकी तुलना वो चंद्रमा से करेगा, किसी के चेहरे पे चमक है तो उसकी तुलना वो सूर्य से करेगा, क्या सूर्य ऐसा तेज चमक रहा है तेरे चेहरे पर, तो हम तो ऐसे तारीफ के पुल बांधते ना। देखिए जो वास्तविकता है उसको यदि विचार की दृष्टि से देखा जाए, तो ये जो हमारी पढ़ाई का पीरियड है, जो हमारा इसको कहना चाहिए कैरियर ओरिएंटेड पीरियड जो है हमारा, जिसमें हमारा भविष्य तैयार होता है, वो कितना चिंता फिक्र वाला जीवन है और कितने मेहनत वाला जीवन है यदि सही रूप में हम व्यतीत करें। कोई भी स्टूडेंट ये नहीं चाह रहा ये जीवन मेरा चलता रहे, ये जल्दी से पूरा हो, किस तरह से बिजनेस करना है तो बिजनेस करूं मैं, नौकरी करना है तो मैं नौकरी करूं, और उस मंजिल पे पहुंचता है जब फिर उसकी अगली गाड़ी इसके मन में जोर मारती है, शादी होनी चाहिए मेरी, मन पसंद होनी चाहिए मेरी, ये क्वालिटीज होनी चाहिए इसमें। और आप सब जानते हो कि आजकल शादियों का क्या हाल होता है। कोई ही भाग्यशाली होगा जो पति पत्नी में मनमुटाव ना होता हो, एक दूसरे को बर्दाश्त करके प्रेम से अपने गृह जीवन चलाते हों। आज की सोसाइटी में, भोगवादी जीवन में ये चीज कम ही देखने को मिलती है। कैसी कैसी जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं, आप विचार करो। माँ बाप जिन्होंने कितने प्रेम से बच्चों को पाला होता है, किसी की पत्नी खराब हो जाती मिल जाती है, किसी को पति खराब मिल जाता है। और आजकल जो भोगवादी जमाना है, तो बच्चे तो घरों में एक या दो ही रह गए अब लोगों के, तो अच्छी पढ़ाई लिखाई उनकी हो जाती है, अच्छी केयर उनकी हो जाती है, तो वो निकल जाते हैं अपनी मंजिल पे। कोई कहीं चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है। तो आप देखो सही, बच्चे भी चाहते हैं माता पिता के पास रहें, परिवार में रहें, क्योंकि सारी जिम्मेदारियां अकेले कंधे पे उठाना बड़ा मुश्किल काम है। दो बच्चे भी पालने हों, पति पत्नी दोनों सर्विस कर रहे हों, शहर में रह रहे हों कहीं, तो दो बच्चों को पालना उनसे पूछो कितना कठिन काम है। एक एक दिन करके वो 10-12 साल काटते होंगे किसान से, बच्चे अब बड़े हो जाएं, कहीं मैं हॉस्टल में डाल दूं, कहीं कुछ कुछ कर दूं। तो कैसा अकेलापन बच्चों के वास्ते भी, पेरेंट्स के वास्ते भी, और उनके जो पेरेंट्स हैं उनके वास्ते भी। पता नहीं हम किस खुशी की बात कर रहे हैं समाज में। दिल बहलाने के लिए बस वीकडेज में हम निकल जाते हैं अपने। आप यूं समझोगे दुख को भूलने के लिए निकल जाते हैं। वो दिन ना मिले तो तब पता लगता है अरे कितना दुखी जीवन है। उठो, तैयार हो, ऑफिस जाओ, लंच करो, डिनर करो, सो जाओ, वो प्रेशर आपका निरंतर बना ही रहता है। प्रतीक्षा करते हैं कोई हफ्ते में एक दिन आएगा तो हमारा ये प्रेशर रिलीज होगा। आपने 5-6 दिन ये प्रेशर लेके जिए, एक दिन रिलीज हो गया तभी तो घाटे का सौदा है वो। तभी तो घाटे का सौदा है। तो उसके बाद फिर बच्चे पैदा हो जाते हैं, उनकी जिम्मेदारी। कितना लंबा जीवन होता है बच्चों का पालने का। माता पिता को कम से कम 22-23 साल तक तो पालना ही पड़ता है, उसके बाद उसको अपने जीवन का होश आया, शायद अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। तो आप देखिए कि जीवन एक बोझ है, भोगवादी जीवन जिसको कह रहे हैं। यदि आप विचार की दृष्टि से देखो तो इस जीव के ऊपर एक बोझ है ये। लेकिन हम जो वास्तविकता जीवन की है उसको वैसा उसका विश्लेषण नहीं करता। इसीलिए महाराज जी ने इसके ऊपर बड़ी डिटेल्स लिखी है संत अवलास के अंदर, भोगवाद की उसमें, वासना विवेक में और अन्य जगह भी बहुत जगह महाराज जी ने इसका नक्शा खींचा है कि कैसे ये जीव दुखी। तो यहां जब आप आते हो तो इन चीजों के बारे में विचार करने का मौका मिलता है आपको। जब विचार करते हो तो आपकी बुद्धि इसी निर्णय पर पहुंचती है ये जीवन जीने का तरीका ठीक नहीं है। लेकिन कितने दिन सोचते हो आप, एक हफ्ते के लिए आए, कोई 5 दिन के लिए आया, कोई 10 दिन के लिए आया, इतने दिन तो सोचते हो। और वहां जाकर 6 महीने में 10 दिन निकाल भी दो 170 दिन बचे वहां पर, तो 170 दिन वो सोचते हो आप। जो 170 दिन सोचोगे उसके संस्कार गहरे बनेंगे या 10 दिन सोचोगे उसके संस्कार गहरे बनेंगे, विचार करके तो देखो। इसलिए महाजी कह रहे हैं प्रेमी ग्रह से जीवन में रहते हुए सुबह शाम 1 घंटे सिमरन करना लाजमी है और बाकी के 4 नियम का भी पालन करो। सत विचारों का संग भी करो, अर्थात सत्संग भी करो, सत्पुरुषों के शास्त्रों का स्वाध्याय भी करो, इन्हीं विचारों को तो पढ़ोगे बार बार वहां पर, अच्छी संगत भी धारण करो, क्योंकि इस मार्ग के चलने वाले जब मित्र होंगे आपके तो उनसे ये बातें करोगे आप, कहाँ पिकनिक करनी है, कहाँ घूमने जाना है, ये बातें थोड़ा करोगे उससे भैया। तो जब आपकी दैनिक दिनचर्या में ये प्रोग्राम शामिल होगा और इसके प्रति आप सिंसियर होगे, तो वो जो भोगवादी वातावरण है और ये जो आध्यात्मिक आपके मन के अंदर वातावरण बना हुआ है, यानी कि ये सतोगुणी वातावरण है, ये समझ आपकी पक्की होती चली जाएगी। जैसे जैसे गृहस्थ जीवन में इन पांच नियम का पालन करोगे, ये समझ आपकी पक्की होती चली जाएगी, क्योंकि आपके पास बुद्धि है और आप ये जानते हो कि क्या ठीक है क्या गलत है। कई बार कंफ्यूज हो जाते हो, लेकिन कितनी बार कंफ्यूज हो गया, रेगुलर इन चीजों का स्वाध्याय करोगे, इस पर चिंतन करोगे, तो ये विचार आपके पक्के हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। जब ये विचार पक्के होंगे, भोगों में अट्रैक्शन होने के पश्चात भी उसके पीछे के जो दोष हैं, भोगों को भोगने के बाद के जो दोष आपके अंदर पैदा होते हैं, वहां भी आपकी नजर जाएगी। अभी तो केवल चस्के पे नजर रहती है आपकी, बड़ा मजा आएगा, उसके बाद आपकी परिणाम पर भी नजर आ जाती है, इसका परिणाम क्या निकलेगा। इसीलिए उस परिणाम के बारे में जब आप विचार करते हो, तो आपको वही नजर आते हैं जो महाराज जी ने समता विलास में लिख रखे हैं। तो सारे सत्पुरुष एक सुर से कह रहे हैं कि ये जो सांसारिक जीवन है, जिसको हम भोगों का जीवन कहते हैं या सुखी जीवन कहते हैं, ये पांच विकारों का जीवन है, ये पांच डिजीज आपके अंदर पैदा करता है। तो दुनिया तो काम क्रोध लोमो अहंकार को रोग जानती ही नहीं है, लेकिन जो इसका शिकार होता है वो तो कहता ही है इसके क्रोध के कारण जो है मेरी जिंदगी बर्बाद हुई। किसी के क्रोध के कारण अच्छे काम तो होते नहीं है, बुरे ही काम होते हैं, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, इसके लालच के कारण जो है मुझको जेल जाना पड़ गया। आप ऐसी बातें करते हैं, जो लोभ है उसके कारण लोग जेल चले जाते हैं, चोर बन जाते हैं, रिश्वतखोर बन जाते हैं, इसी लोग कारण तो बनते हैं। तो पूरा समाज जो ऐबों में फंसा हुआ है वो इन पांच विकारों की देन है नहीं, और ये पांच विकार भोगवादी जीवन से उग्र होते हैं। तो बताइए ये सांसारिक जीवन विकारी जीवन है या सुखी जीवन है। सत्पुरुष ये दृष्टि हमको देते हैं, ये विकारी जीवन है। पांच तत्व की ये देह बनी है, पांच तत्व का संसार बना हुआ है, जो संसार का मेटीरियल है वही देह का मेटीरियल है, और जीव यदि देह को अपना स्वरूप समझ रहा है तो ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पांच तत्व के जो पांच विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये जीव की संपत्ति बन गए। इस संपत्ति को जीव इकट्ठी कर रहा है देह के भोगों के द्वारा, देह के कर्मों के द्वारा। ये संपत्ति जो जीव इकट्ठी करेगा, ये संपत्ति कहां इकट्ठी होगी, मन में ही तो इकट्ठी होगी। तो अब बताइए मुझे, मन में जिसने ये संपत्ति इकट्ठी की है वो जीव चैन में जिएगा या बेचैनी लेकर जिएगा। एक एक शौक शराब पीने वाले से पूछो, कहेगा एक पैग मिल गया, वाह मजा आ गया, ये तो कहेगा। लेकिन उसकी पत्नी वो कहेगी सत्यानाश हो गया, मेरा पति पी के पड़ जाता है, नहीं नहीं मेरे घर का तो सत्यानाश हो गया। लेकिन पीने वाला तो मोह में है ना, उसके शराब के उसकी आदत में है ना, वो उसको मजा आ रहा है, लेकिन वो मजा कैसा है, शराबी के शरीर का क्या हाल होता है, शराबी के लिवर का क्या हाल होता है, शराबी की बुद्धि का क्या हाल होता है, उसके बच्चों की कैसी बर्बादी होती है, सोसाइटी का क्या हाल होता है। आप पूरा इन टोटलिटी एक आदत का असर तो देखो, भले ही कितने शराबी की सोसाइटी में क्यों ना हो, लेकिन समाज आज भी उस शराब की लत को दोष करके देखता है, यही भोगवादी समाज। देखिए हम क्योंकि आदत के गुलाम हैं, इसलिए गलत आदत भी हम उसके अनुसार जीवन जीते रहते हैं। तो समाज में जो भोगवादी जीवन है वो इस प्रकार का है, हम तो तुरंत का सुख देखते हैं, अच्छा ये चीज खाई बड़ा मजा आया, ये बार बार मिलनी चाहिए, कहते हैं खाने में तो बड़ा मजा है, हम ऐसे देखते हैं। जिसको कहते हैं बचपना बुद्धि, इसको कहते हैं बचपना बुद्धि, जैसे बच्चे की बुद्धि होती है ना, वो उसका इफेक्ट नहीं जानता, जो चीज अच्छी लगती है उसको मिलनी चाहिए। तो हमारा जीवन भी ये इस प्रकार की अज्ञानता का जीवन है जो हम संसारिक जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि सब ऐसा ही कर रहे हैं, इसलिए बस कहते हैं ऐसे ही जीना चाहिए, दूसरा उनको तरीका पता ही नहीं है जीने का, ना वो ये जानते हैं कि जीव क्या होता है, ना वो ये जानते हैं कि देह मर जाती है तो हमारे पास क्या बच जाता है, मैं भी मर जाता हूं या मैं बच जाता हूं, कुछ नहीं पता, कर्मकांड सारा कर लेंगे किसी के मरने के बाद, लेकिन अंदर समझ किसी चीज की नहीं। इसलिए पंडित मुल्ला ऐसा मूर्ख बनाते रहते हैं हम लोगों को, कोई मरे तो मूर्ख बनाते हैं, पैदा हुए तब मूर्ख बनाते हैं, वो जानते हैं ये मूर्ख है, पढ़े लिखे मूर्ख हैं, इनको पता ही कुछ नहीं, सोसाइटी में जो चलन चल रहा है वो चलन के हिसाब से हम करते रहते। इसीलिए जब आप जीवन में पूर्ण गुरु को धारण करते हैं, पूर्ण गुरु को धारण करने का मतलब वो पूरी सृष्टि के भेद को जानने वाला है, पूरी सृष्टि के भेद को, केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, पूरी सृष्टि के भेद को जो जानने वाला है, जिससे कुछ नहीं छुपा, इसीलिए गुरु को हम ईश्वर कहते हैं, जो सर्वज्ञाता है और सर्व व्यापक है। तो ऐसे गुरु के ज्ञान को जब मैं शिष्य बनकर सीखना शुरू करता हूं, वो मेरे कल्याण वाली विद्या है, जिसमें कोई दोष फिर बचेगा नहीं। उस शिक्षा को यदि मैंने समझ लिया और उसको अपना लिया, फिर मेरे मन के अंदर कोई दोष बच नहीं सकता। तो जब ये मन साफ होता है, मन इसका निर्मल होता है, उस गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलकर, कुछ दिन तो तप करना पड़ता है इसको, शुरू शुरू में तो आदतें जब बदलने के दिन होते हैं उस समय तो थोड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि आदतें बनी हुई हैं, जो 10 तरह का खाना खाता था अब मुझे 2 तरह का खाना खाने को मिल रहा है, तो 8 तरह के खाने के जो स्वाद आते थे वो तो छूटे ना आते, मन के अंदर संस्कार बने हुए हैं उसके, तो कुछ दिन तो आपको ऐसा लगेगा कि जिंदगी मेरी नीरस हो रही है, बड़ी ड्राई हो रही है, ये सुख मुझसे छूटते जा रहे हैं, आगे ईश्वर का कुछ आनंद मिल नहीं रहा है, कि अभी बात पक्की समझ में नहीं आई है, अभी ये प्रैक्टिस का पीरियड है। तो कोई भी देखो, मिलिट्री में भी जाओ आप, ट्रेनिंग पीरियड बड़ा सख्त होता है, कहीं भी जाओ ट्रेनिंग पीरियड बड़ा ड्राई होता है, लेकिन उसके बाद उस ट्रेनिंग का जब फायदा मिलना शुरू होता है, उससे जब पैसे मिलना शुरू होते हैं, तब अच्छे दिन लगते हैं। तो अध्यात्म में भी एक प्रारंभ का पीरियड है जो तब से गुजरना पड़ता है, संसार में भी कुछ भी सीखते हो तो तब से गुजरना ही पड़ता है, स्कूल में पढ़ो तभी तो है आपका, इंद्रियों का तब भी है नहीं, और मन का तब भी है, देह का तब भी है, सब कुछ है। तो इस तप से हमें कुछ दिन या कुछ वर्ष गुजरना पड़ता है, ये हमारा ट्रेनिंग पीरियड है। इसके पश्चात जब मेरे आदतें बन जाती हैं, मेरे संस्कार बदलने लगते हैं, तब मुझको दिखाई पड़ने लगता है अब मेरे पास कंपेरेटिव स्टडी के लिए चीज आ गई, पहले का स्वभाव क्या था, अब का स्वभाव क्या है, पहले कितनी चीजों के बिना मेरा गुजारा नहीं होता था, अब कितनी चीजों के बिना मेरा गुजारा हो जाता है, पैसे की तरफ से चिंता कम हो गई है, जो अनजाना भय हर समय बना रहता था अब मेरे अंदर एक फेथ आ गया है कि प्रभु के हुक्म के अलावा यहां कुछ नहीं होता। प्रभु के हुक्म के अलावा यहां कुछ नहीं होता। प्रारब्ध चक्र के अनुसार जीवन चलता है। अब ये उसके अंदर सारे जो विचार थे उसके प्रैक्टिकल लाइफ में वो आने लगे हैं, तो उसकी चिंता शक्ति भी कम हो जाती है, भोगों का प्रेशर भी कम हो जाता है, मन जो हर समय ललचाता रहता था उसको भी कुछ चैन मिलता है, और भविष्य में मुझको इस मार्ग पर चलकर क्या प्राप्त होगा वो भी उसको नजर आने लगता है, और मौत भी मेरे इस डेवलपमेंट को, इस संपत्ति को छीन नहीं सकेगी, इस बात का भी बोध उसको हो जाता है। तो ये वर्तमान जन्म तो बचा उसका, अगला जन्म भी तो बचा उसका, गृहस्थ जीवन तो उसका बोध ही नहीं था आपको। अब आपको उसका बोध हो रहा है, तो आप अब आप अपनी लाइफ के प्रति सही मायनों में सिंसियर हो रहे, तो ये जो सिंसियर व्यक्ति है विचार करके देखो क्या यहां से जाके घर में वैसे ही फंस जाएगा, वो क्या संभव है उसके लिए घर में जाके फंस जाना, वो ऐसी बातें कभी नहीं करेगा क्योंकि उसकी बुद्धि होश में आ चुकी है। हमने सुना है, हां हां भी की है, कुछ समझा भी है, लेकिन कितना टेम्परेरी पीरियड उसका रहा है ये तो देखो आप, उसके संसार तो बन ही नहीं पाए। इसीलिए जब रिपीटेडली आप इस प्रोग्राम को अटेंड करते हो, मैं तो आपसे कहता हूं कि कम से कम ये बहुत बिजी हो संसार में, तो अपने जीवन कल्याण के लिए कम से कम 6 महीने में 1 हफ्ता तो एकांतवास को लिए दे ही सकते हो। ऐसा कोई नहीं है जो 6 महीने में 1 हफ्ता ना दे सकता हो। यदि नहीं दे सकता वो सिंसियर नहीं है, बस सीधी सी बात, वो अपनी लाइफ के प्रति सिंसियर नहीं है, वो बिगड़ा हुआ आदमी है, सीधी सी बात है, उसकी जिंदगी बर्बाद होनी ही होनी है, कोई बचा नहीं सकता उसको। भाई ईश्वर ने ये तपोभूमि तैयार करी है हमारे लिए, ये तो ईश्वर का काम है, ये तो हमें आंख से दिखाई पड़ रहा है, ये तो किसी पब्लिक के आदमी ने इंटरेस्ट लेकर नहीं बनाई ना, ईश्वर ने इस तपोभूमि की व्यवस्था हमारे लिए की है, उसके आदेश से ये बनी है। और समता विलास में महाराज जी ने तप का नियम लिखा, रामकृष्ण परमहंस साफ साफ कह रहे हैं कि गृहस्थी जीव के लिए उसके उद्धार का एकमात्र रास्ता है, वो क्या कह रहे हैं, एकमात्र रास्ता है कि वो बीच बीच में एकांतवास करता रहे, कुछ घंटों का, कुछ दिनों का, कुछ हफ्तों का, बीच बीच में एकांतवास करता रहे, क्योंकि होश में लाने वाला वही एकांतवास होगा उसको। यदि वो मौके उसको नहीं मिल रहे हैं तो धर्म भी उसका बर्बादी करेगा उसको, संसार में जो धर्म सीखेगा ना वो भी उसको बर्बाद कर देगा। जो ऋषियों की ओरिजिनल चीज है वही आपको धर्म सिखाती है, समाज धर्म जो सिखाता है ना वो धर्म भी बर्बाद कर देता है, समाज को ही बर्बाद कर देता है, कि वो शारीरिक धर्म होता है, कोई जनेऊ धारण कर लेगा, कोई चोटी रख लेगा और अहंकार कर लेगा कि मैं देखो धर्मात्मा हूं, दिखाएगा लोगों को। जबकि महाराज जी साफ कह रहे हैं शारीरिक धर्म को धर्म कहते ही नहीं है, धर्म का शरीर से कोई संबंध नहीं है। अब गुरु की बात तो देखिए, कहते हैं धर्म का शरीर से कोई संबंध नहीं है और मैं शरीर बना घूम रहा हूं, तो शरीर का धर्म तो आपको धर्म का अहंकारी बना देगा और धर्म आपको निर्माण बनाता है, धर्म आपको झुकना सिखाता है। तो इसीलिए जब आप ऋषियों के शास्त्रों का गहराई से खुद अपने शौक से अपनी इच्छा से उसका स्वाध्याय करते हैं और जो डाउट्स होते हैं उसको दूर करने की दृढ़ इच्छा लेकर घूमते हो तो दूर भी होंगे वापस, तब आपकी बुद्धि परिपक्व होती है। तो ये जो सांसारिक बुद्धि है ये सत बुद्धि में बदल जाती है। इसमें फिर सत का निश्चय आता है, गुरु ज्ञान का निश्चय आता है, फिर ये अपने जीवन के बारे में उस ज्ञान के प्रकाश में सोचती है, तब इसको साफ साफ नजर आते हैं जो सांसारिक खुशहाल जीवन है ये खुशहाल जीवन नहीं है, ये बर्बादी का जीवन है, ये पांच विकारों से ग्रस्त जीवन है, ये पूरा का पूरा जन्म बर्बाद करके ही छोड़ेगा। चाहे आपने कितनी भी बड़ी से बड़ी प्रगति समाज में क्यों ना की, आपने बड़े अच्छी तरह से परिवार का पालन क्यों ना किया हो, लेकिन वो सारी की सारी बर्बादी है मनुष्य की, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि संस्कार आपके जो निर्माण होंगे वो पांच विकार के ही होंगे। तो अब आपकी जो दृष्टि है वो इस चीज को देखने वाली बन गई है। ऐसा व्यक्ति घर जाके कैसे खो जाएगा बताओ मुझे? तपोभूमि में बुद्धि उसकी जागृत हो जाती है, घर जाके सो जाती है। ये वही बात कह सकता है जिसकी बुद्धि विचारहीन है, जो जितनी देर यहां रहती है बस उतनी देर विचार करती है, घर जाके वही भोगों का विचार करती है। उसकी तो यही दुर्दशा होनी है जो आपका प्रश्न। इसीलिए यहां से घर जाकर हम लापरवाही ना करें। ये प्रोग्राम आपका घर पर भी इसी प्रकार चलना चाहिए, क्योंकि वहां हमारी लाइफ डिसबैलेंस्ड है। घर में जितना टाइम देना चाहिए मोह में आकर उससे ज्यादा टाइम देते हैं, कारोबार जितनी देर करना चाहिए लालच में आकर उससे ज्यादा घंटे कारोबार करते हैं, अपने खर्चों को कम करना चाहिए ताकि ज्यादा कमाई की जरूरत ही ना पड़े आपको। तो आप यदि गुरु के मार्गदर्शन अनुसार जीवन व्यतीत करते हो तो हर साल दिखेंगे आपकी सिंसियरिटी बढ़ी है। मैं खुद देखता हूं अपने आप को, ये 40 साल यहां आते हुए हो गए, कि जो मेरा दैनिक जीवन यहां तपोभूमि में बीतता है ऑलमोस्ट वैसा ही जीवन घर पे भी बीतता है ऑलमोस्ट। और ये गैप मेरा धीरे धीरे एज के साथ कम होता गया। अब ये स्थिति है कि ऑलमोस्ट जैसा जीवन तपोभूमि में बीतता है वैसा ही घर में भी बीतता है, लेकिन इसका मुकाबला नहीं किया जाता, क्योंकि यहां ना पेपर पढ़ने को मिलता है, ना टीवी न्यूज देखने को मिलती है, ना संसारी लोगों के बीच में रहने को मिलता है, ना वातावरण ही दूसरा है। तो और जो थॉट्स का इम्पैक्ट मन पे पड़ता था वो तो यहां है ही नहीं। वो इसलिए वातावरण ही यहां पे, यहां की व्यवस्था ही ऐसी है कि आपको इन्हीं सत विचारों से 24 घंटे जोड़े रखती है। तो इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा आपके संस्कारों पर वो तो बहुत गहरा पड़ता है। इसीलिए दुनिया का सबसे जरूरी काम ये समझो कि यहां मैंने जरूर आना है। आपके दिमाग में ये हाईएस्ट इंपॉर्टेंस इस काम को मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं आप वक्त नहीं निकाल सकते, आपके दिमाग में उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। प्रैक्टिकल फैक्ट ये है। इसलिए टाइम होते हुए भी आप जो है वो टाइम नहीं निकालते, बहाने बना देते हो। तो जैसे जैसे आप समता विलास की तालीम को समझोगे, उस पर गहरा मनन करोगे, वो शास्त्र सारी जिंदगी एक ही रहेगा आपके आगे, लेकिन पूरी जिंदगी को बदल देगा। तो ये पढ़ने के लिए नहीं है समतरदास, लोग कहते मैंने 6 बार पढ़ चुका हूं मैं सब जानता हूं, ये गहरे मनन में उतरने के लिए। और गहरे मनन का इफेक्ट क्या होता है कि हर निश्चय जो समता विलास में लिखा हुआ है वो आपकी बुद्धि का निश्चय बन जाता है। आज वो महाराज जी का निश्चय है, महाराज जी का निर्णय है, मेरा निर्णय नहीं है, मेरा निश्चय नहीं है। तो गहरे मनन के बाद वो सारा निश्चय आपकी बुद्धि का बन जाता है। महाराज कहते हैं पर ऐसी जो निश्चयात्मक बुद्धि है वो ये संसारी गलतियां कैसे कर सकती है, अपना जीवन कैसे बर्बाद कर सकती है, सारा संसार डूबता रहे उसकी बला से, अपना जीवन वो बर्बाद नहीं करेगा। उनको तो होश नहीं, करते रहे बर्बाद। लेकिन मैं क्योंकि जानता हूं, मैं जानकर अपना जीवन बर्बाद नहीं कर सकता, इसलिए मैं होश में रहकर जीवन व्यतीत करता हूं, यहां से जाकर भी। इसीलिए जो हम जैसे हम संसारी प्रोग्राम बनाते हैं, उसी प्रकार से हमको ये आध्यात्मिक प्रोग्राम भी जीवन में बनाना ही चाहिए। इसके लिए सेक्रीफाइस करना चाहिए, तो कष्ट उठाना चाहिए। जैसे पढ़ाई में कितने कष्ट उठाए, कितने कष्ट उठाए, अपना कैरियर बनाने में कितने कष्ट उठाए। ये तो सबसे बड़ा कैरियर है भैया, ये वो कैरियर है जो राक्षस से ईश्वर बना देता है। एक राक्षसी स्वभाव जिस मनुष्य का है, उसका संत जैसा स्वभाव बन जाता है, राक्षस से ईश्वर बन जाता है। ये तो वो तालीम है, और आज भी इंपॉर्टेंट है। सारी दुनिया आज भी इस तालीम की पूजा करती है, क्योंकि हम किसी अवतार का अपमान करना चाहते हैं क्या? कितनी पूजा करते हैं, कितनी श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं महाजी को। आज की दुनिया में जो भी जानता है, कितनी श्रद्धा की दृष्टि से देखता है, क्यों देखता है? तो आज भी सत्पुरुषों की जो कीमत है वो कम नहीं हुई है, चाहे भले ही कितना ही समाज बिगड़ गया, उनकी कीमत आज भी बनी हुई है। तो यदि मैं उनकी तालीम को अपनाकर चलता हूं, तो मेरी कीमत भी समाज में बढ़ेगी। प्रारंभ में थोड़ा सेक्रीफाइस जरूर करना पड़ता है, लेकिन गीता की बात सत्य है। अभ्यास काल के अंदर ये जो सतमार्ग है, ये विष के समान प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में ये अमृत के समान। और भोगियों का कहते हैं, भोग काल में वो अमृत के समान प्रतीत होता है, लेकिन परिणाम में वो विष के समान है। ये गीता के वर्ड्स, ये बात सत्य। इसलिए ये बात हम याद रखें शास्त्रों की, वो जहर पी रहा हूं जो गृहस्थ जीवन में फंसकर मैं आध्यात्मिक जीवन को छोड़ देता हूं, कहता हूं टाइम नहीं है, बड़ा बिजी हूं, मेरे बिना कोई काम ही नहीं चलता, तो मर जाएगा देख सारे काम चलते रहेंगे। ये संसार ऐसे ही चलता रहेगा, इसलिए बहाने बनाना छोड़, इसकी इंपॉर्टेंस समझ। जब इसकी इंपॉर्टेंस समझेगा तो इसके लिए सेक्रीफाइस करना सीखेगा, किसी की बुराई भी मोल ले लेगा, घर के कामों का नुकसान भी कर लेगा, तो कुछ पैसे का भी नुकसान कर लेगा, लेकिन इसको अपनाएगा। इसको अपनाने वालों ने, वाले राजाओं ने अपना पूरा पूरा राजपाट छोड़ दिया, मैं क्या छोड़ने को, मुझको छोड़ने को क्या कह रहे हैं सत्पुरुष, मुझसे तो छोटे मोटे त्याग की बात कर रहे हैं वो। इसकी तो इतनी कीमत है, बड़े बड़े राजाओं ने जो विश्व के फेमस राजा हुए, उन्होंने पूरा का पूरा राजपाट छोड़ दिया इस काम के लिए। मैं कितने बहाने बनाता हूं विचार करूं तो देख। इसलिए अध्यात्म की जो कीमत है, वो कीमत समझना चाहिए, और इसको दैनिक जीवन में, जो गृहस्थ जीवन आपका है, उसमें पूरी सिंसियरिटी से इस पांच नियम को अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। तब आपके संस्कार बनेंगे, जब संस्कार बनेंगे फिर आप ये शिकायत नहीं करोगे। तब वो भूमि आता हूं तो यहां मन रम जाता है, घर जाता हूं तो घर में रम जाता है, ये सब गायब हो जाता है, ये बात आप नहीं करोगे। फिर जब ये बात करोगे तो आपको नजर आ जाएगा कि मैं अपनी बर्बादी के बीज खुद ही बो रहा हूं, तो बर्बादी की फसल भी मैंने ही काटी है। आप अलर्ट हो जाओ, ऐसी गलतियां नहीं करो। ओम जम सत्य।